साजी का दूसरा सफर। हाँ तो बच्चों, कैसेट कहानी नंबर 3 में सिंबा जहाजी के पहले सफर की दास्तान तो आप सुन ही चुके हैं। अब आइए हम आपको बताते हैं इसके बाद क्या हुआ। बगदाद शहर का गरीब कुली हिमबाद वादे के मुताबिक दूसरी शाम को सिंबा जहाजी के घर पहुंच गया।
आइए भाई हिमबाद, अंदर चले।
सिंबाद अपने मेहमान को लेकर खाने के कमरे में जाता है। दोनों पुर तकल्लुफ खाना खाते हैं। फिर हिमबाद कहता है,
हुजूर, मैंने बड़ी बेचैनी से सारा दिन गुजारा है। कब शाम हो और मैं आपके पास आऊं और आपके दूसरे सफर की दास्तान सुनूं।
मैं तो खुद भी आप ही के इंतजार में था। कहिए तो शुरू करूं।
बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह।
अल्लाह के फजल से मैंने अपने पहले सफर में ही इतनी दौलत कमा ली थी कि बगदाद शहर के अमीर लोग मेरे बारे में बातें करने लगे थे।
सिंबाद तो इतनी दौलत कमा चुका है कि सारी उम्र बैठकर खाए तो खत्म ना हो।
दौलत मेरा तो ख्याल है उसकी औलाद की औलाद भी खाती रहे तो भी खत्म ना हो।
मगर आप देखिएगा, वो चैन से नहीं बैठेगा, जल्दी ही किसी न किसी सफर पर निकल पड़ेगा।
हाँ हाँ, दौलत बड़ी बुरी चीज होती है भाई।
ये बात नहीं, उसको दुनिया देखने का सैर करने का शौक है।
मेरे दोस्त ने ठीक ही कहा था। नए नए लोगों से मिलने के लिए, नई नई जगह देखने के लिए मैंने एक बागवानी जहाज में बहुत सारा सामान वगैरह लदवाया और एक नए सफर पर निकल पड़ा। हम कई बंदरगाहों पर गए, कई जजीरों पर रुके और अपना सामान अच्छे अच्छे दामों बेचते हुए आगे बढ़ते रहे। चंद दिनों के सफर के बाद हमारे जहाज में कुछ खराबी पैदा हो गई और हमें एक छोटे से जजीरे पर रुकना पड़ा। जहाज जब साहिल पर लग गया तो कप्तान ने कहा,
दोस्तों, जहाज में बहुत मामूली सी खराबी पैदा हो गई है। उम्मीद है मैं इसे जल्द ही ठीक कर लूंगा। आप लोग चाहे तो जजीरे पर जा सकते हैं, मगर जल्द ही वापस आने की कोशिश कीजिएगा।
अरे आओ आओ, हाँ देखो देखो, ये देखो, ये तो बहुत ही खूबसूरत जजीरा है।
हाँ, यहाँ तो हर तरफ फूल ही फूल है।
और देखो ना, वो घास देखो कितनी अच्छी है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने कालीन बिछा दी हो।
अरे वो देखो, वो उस पेड़ पर तो फल भी नजर आ रहे हैं।
हाँ फल, हाँ देखो, पहले देखते पहले कौन तोड़ता है।
अपने साथियों के साथ खेल कूद और भाग दौड़ में मैं भी शामिल हो गया। मैं भागते भागते अपने साथियों से काफी दूर निकल आया और जब थक गया तो मैंने सोचा कि थोड़ी देर लेट कर आराम कर लूं फिर चलूंगा। एक दरख्त के नीचे मैंने अपनी चादर बिछाई और लेटते ही सो गया।
वो देखो, वो हरी झंडी।
हाँ हाँ, जहाज ठीक हो गया। कप्तान साहब हमें बुला रहे हैं।
कोई इशारा कर रहे हैं, चलो आ जाओ भैया। सब लोग कहाँ चले गए? आओ आओ, जहाज पर आ जाओ, जल्दी आओ
भैया। सब लोग आ गए,
कोई छूट
तो नहीं गया?
अरे नहीं नहीं, सब लोग हैं, कोई छूटेगा नहीं। आओ चलो, आ जाओ
आ जाओ।
काफी देर बाद जब मेरी आंख खुली तो अरे ये सब लोग कहाँ चले गए? ये तो अपना ही जहाज है, पर अब वहां पहुंचा कैसे जाए? उसका तो बागवान भी नजरों से गायब होता जा रहा है।
और आप उस जजीरे पर बिल्कुल अकेले रह गए?
हाँ भाई, पहले तो मैं बहुत घबराया, फिर मैंने सोचा जजीरे का हाल मालूम करने के ख्याल से अल्लाह की तरफ से इसमें भी कोई ना कोई बेहतरी जरूर होगी, और मैंने एक पेड़ के ऊपर चढ़ना शुरू कर दिया।
वो क्या दूर वो सफेद सा गेंद कैसा पड़ा है?
अच्छा, ये गेंद नहीं है, कोई इमारत मालूम होती है, तकरीबन 50 कदम तक फैली हुई। मगर ये कैसी इमारत है? न खिड़की, न दरवाजा और न अंदर जाने का रास्ता। ये कैसी आवाज थी? अंधेरा क्यों छाने लगा? अभी तो सूरज भी गुरूब नहीं हुआ, फिर ये अंधेरा कैसा?
उकाब, मगर इतना बड़ा उकाब, ये मेरी तरफ क्यों चला रहा है?
अच्छा तो ये बात है, उसको मैं सफेद गेंद और गोल इमारत समझ रहा था, वो असल में उकाब का अंडा निकला।
इतना बड़ा अंडा?
इसी से अंदाजा लगा लो उकाब खुद कितना बड़ा होगा।
उकाब ने आपको नुकसान नहीं पहुंचाया?
बिल्कुल नहीं, बस आराम से आकर अंडे पर बैठ गया।
फिर
जब काफी देर गुजर गई तो मैंने सोचा इस जजीरे से बाहर निकलने के लिए मुझे खुद को उकाब के पैरों के साथ बांध लेना चाहिए। मैंने जल्दी जल्दी अपनी पगड़ी उतारी, खूब मजबूती के साथ उसके पैरों से मिलाकर अपने आप को बांध लिया और उकाब के उड़ने का इंतजार करने लगा। सारी रात गुजरने के बाद जब सुबह हुई तो यूं लगा जैसे उकाब अब उड़ने वाला है। यही तरकीब काम आ गई, मैं उड़ने लगा, मैं तो हवा में उड़ने लगा, ये तो ऊपर ही ऊपर जा रहा है। यहाँ से जमीन कितनी छोटी नजर आ रही है और वो जजीरा तो नजरों से गायब ही हो गया। पानी पानी है, ये क्या? मैदान छोड़कर पहाड़ों की तरफ कहाँ चल पड़ा ये? अरे ये तो किसी वादी में उतरना चाह रहा है, मुझे पहले ही कूद जाना चाहिए, कहीं इसके पैरों के नीचे आकर दब ही न जाऊं। मगर उकाब जमीन पर उतरने के बजाय बहुत बड़े सांप को अपनी चोंच में दबाकर दोबारा उड़ गया और नजरों से गायब हो गया।
और आप यहां भी तन्हा रह गए?
सिर्फ यही नहीं, बल्कि जब मैंने अपने चारों तरफ देखा तो मालूम हुआ कि वादी तो चारों तरफ पहाड़ों से घिरी हुई है और यहां से भी निकलने का कोई रास्ता नहीं है।
अच्छा फिर क्या हुआ?
मैंने जब अपने पैरों के पास बिखरे हुए छोटे बड़े पत्थरों को देखा तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। या अल्लाह, इतने सारे हीरे और एक एक हीरा मेरी मुट्ठी से भी बड़ा। मैं इनको बेचकर तो बगदाद शहर का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। मगर मैं इस वादी से निकलूंगा कैसे? सांप नहीं, बल्कि वो तो अजहे थे और इतने बड़े कि अगर चाहे तो हाथी को भी निकल जाए। मैं पहले तो एक तरफ हट गया, फिर मैं वहां से भागा और बड़ी मुश्किल के बाद रात तलाश करके उसमें रात गुजारने का फैसला किया। अजहे देखकर मैं इतना डर चुका था कि मैंने सारी रात गार के अंदर बैठ कर गुजार दी। सुबह हुई तो मैं गार से बाहर निकला, क्या देखता हूँ तो सारे सांप और अजदहे एक एक करके आसपास के गारों में छुपे जा रहे हैं। पता नहीं वो सूरज की रोशनी से छुप रहे थे या उकाब से बचने के लिए ऐसा कर रहे थे। मैं सारी रात का जागा हुआ था, थक भी गया था। ठंडी हवा जो लगी तो खुले आसमान के नीचे चादर तान कर आराम से सो गया। अभी मेरी आंख लगी ही थी कि अचानक जोर से किसी चीज के गिरने की आवाज आई। मैं घबरा कर उठ बैठा, चीजों के गिरने की आवाजें बढ़ती जा रही थी। मैंने देखा कि गोश्त के बड़े बड़े टुकड़े पहाड़ों की तरफ से वादी में गिर रहे हैं, बड़ी बड़ी चीड़ें उनकी तरफ लपकती हैं और गोश्त के टुकड़ों को अपने पंजों में दबाए पहाड़ी की तरफ उड़ जाती है। अब जो मैंने गौर से देखा तो मालूम हुआ असल में ये चीड़ें सिर्फ गोश्त नहीं उठा रही है बल्कि इसके साथ चिपके हुए हीरे उठाकर पहाड़ी पर पहुंचा रही है। ये कहीं वही वादी तो नहीं जिसके बारे में मैंने सुन रखा था कि दूर दूर से सौदागर आकर इसी तरह गोश्त फेंक फेंक कर चीलों के जरिए कीमती हीरे हासिल करते हैं। वादी से निकलने और हीरे हासिल करने की तरकीब मेरे जहन में आ चुकी थी। मैंने जल्दी जल्दी बहुत सारे हीरे चुनकर अपनी जेब में डाल लिए, फिर मैंने गिरे हुए गोश्त के बड़े बड़े टुकड़े उठाए, उनको अपनी पीठ पर कस कर बांध लिया और जमीन की तरफ मुंह करके लेट गया, बिल्कुल खामोशी के साथ सांस रोककर। और फिर वही हुआ जिसकी मुझे उम्मीद थी। एक बड़ी सी चील आई, मेरी पीठ पर बंधे हुए गोश्त को झपट्टा मारकर उठा ले गई और काफी देर तक हवा में उड़ते रहने के बाद उसने मुझे अपने घोंसले में गिरा दिया। घोंसले में पहुंचते ही चील के बच्चों ने गोश्त पर हमला करना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद मुझे चंद आदमियों की आवाजें आई और मैं समझ गया कि ये जरूर वही सौदागर हैं जो अब घोंसले से हीरे उठाने आए हैं। शोर सुनकर चील घोंसले से उड़ गई। सौदागरों का शोर मेरे करीब आता
गया। ये क्या, ये तो आदमी है।
करीब चलकर देखो।
पता नहीं बेहोश है या मर गया।
नहीं भाई, पता नहीं, मैं जिंदा हूँ।
मगर तुम हो कौन और यहाँ कैसे आए?
सब बता दूंगा, पहले मुझे नीचे तो उतरने दीजिए। मैंने उनको अपनी सारी कहानी सुनाई। मेरे पास जो हीरे थे वो हमने आपस में बांट ली और मैं उनके साथ उनके शहर चला गया। चंद दिनों आराम करने के बाद मैंने सौदागर दोस्तों से एक बादबानी जहाज लिया और बगदाद वापस आ गया।
और इस तरह आपका दूसरा सफर खत्म हो गया।
हाँ भाई, इन बात उन हीरों को बेचकर मैं और भी अमीर हो गया और इसके बाद गरीबों की मदद करना मैंने अपनी जिंदगी का उसूल बना लिया।
बड़े मजे की कहानी है हुजूर। रात काफी हो गई है, इजाजत दीजिए सरकार, सुबह उठकर मजदूरी पर भी जाना है।
अच्छी बात है, लो ये चंद नशर्तियां रख लो, कल शाम को जरूर आना, मैं अपने तीसरे सफर के बारे में तुम्हें बताऊंगा।
हुजूर ये अशर्फियां ना दीजिए, इस तरह तो मेरी आदत खराब हो जाएगी।
रख लो रख लो, जिद ना करो, आदत खराब ना होने देना और कल जरूर आना।
अच्छा हुजूर, खुदा हाफिज।
खुदा हाफिज।